हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दो दिन रुक रुक कर लगातार बारिश होती रही। ध्रुति को अर्णव ने ऑफिस आने से मना कर दिया था। ये दो दिन उसने घर पर कुश के साथ बिताए थे। माधुरी और उसके बीच तो जैसे कोल्ड वॉर छिड़ी हुई थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और वजह थी ध्रुति का फैसला, माधुरी की जिद। ध्रुति माधुरी को समझा समझाकर थक गई थी, और माधुरी ध्रुति की जिंदगी को लेकर निराशा से खासी परेशान थी। जब तक वजह सिर्फ अर्णव का व्यवहार था, वो फिर भी समझ जाती थी, पर ध्रुति की आत्मग्लानी में वो उसे उसकी जिंदगी और खुशियां तबाह नहीं करने दे सकती थी। बस इसलिए दोनों के बीच खामोश युद्ध चल रहा था। आज की सुबह काफी हसीन थी। बारिश की बौछारों ने जैसे सब कुछ तरोताज़ा कर दिया था। सब कुछ धुला धुला सा प्रतीत हो रहा था, मानो पूरा दार्जिलिंग शहर झरने से नहा कर निकला हो। आसमान कई दिनों बाद आज बिल्कुल साफ था, और सूरज की केसरिया सुनहरी किरणों से रंगा था। पेड़ पौधे सब ताजगी से भरे थे। सड़कें, घर सब चमक रहे थे। ध्रुति रोज की तरह सुबह के काम निपटाने के बाद ऑफिस जाने को तैयार हुई और आज खुद से ही ऑफिस के लिए निकल गई। अर्णव, जो रोज ऑफिस जा रहा था, आज भी वक्त पर ऑफिस पहुंचा और रोज की तरह कैबिन की ओर बढ़ते हुए काका से सवाल किया। काका, ध्रुति आई है?
नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई है।
अर्णव को उम्मीद थी कि आज वो आएगी, पर अभी पूरा वक्त भी नहीं हुआ था, इसलिए उसने सर हिला दिया। फिर आगे बढ़ा ही था कि काका के आगे के शब्द उसके कानों से टकराए। सर, आपसे मिलने कोई मैडम आई है?
मुझसे मिलने?
अर्णव ने पलटते हुए चौंकते हुए सवाल किया। काका ने सहमति ने सर हिला दिया। जी साहब, आपसे मिलने आई है। कह रही थी कि आप जानते हैं उन्हें, तो हमने उन्हें आपके कैबिन में बिठा दिया है।
अच्छा, ठीक है, देखता हूँ मैं।
अर्णव ने सोचने के अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ कौन सी लड़की आ सकती है उससे मिलने, जबकि उसके यहाँ होने और काम करने के बारे में बस गिने चुने चंद चुनिंदा लोगों को ही पता था। यही सोचते हुए उसने कैबिन की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोलते हुए कैबिन में घुसा, कोई मोहतरमा अचानक ही आकर उसने सीने से लिपट गई, जिससे अर्णव बुरी तरह चौंक गया। आगे बढ़ते कदम ठिठके और अचानक हुए इस हमले से उसके कदम लड़खड़ा गए। दरवाजे को थामते हुए उसने बैलेंस बनाया, पल भर को शॉक्ड रह गया, फिर जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने उस लड़की के कंधों को थामते हुए उसे खुद से दूर किया। इरादा तो उसका उस पर खूब चिल्लाने का था, आखिर हिम्मत कैसे हुई उसकी बिना उसकी परमिशन के उसके करीब आने की। पर जैसे ही नज़र उस चेहरे पर पड़ी, सारा गुस्सा पल में शांत हो गया। आंखें बेयकीनी से फैल गईं और वो हैरान परेशान सा उसे देखने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ, और ऐसे गले लगने का क्या मतलब था? ना चाहते हुए भी अल्फाजों में नाराज़गी घुल गई थी और चेहरे पर नाराज़गी के भाव उभरे थे, पर वो लड़की तो बिल्कुल बेफिक्र थी। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। डैड ने कल बताया कि आप अभी यहीं हैं, तो उनसे आपका एड्रेस निकलवाया और आ गए यहाँ आपसे मिलने। तुमने मुझे क्यों मिस किया और यहाँ क्यों चली आई? अर्णव उसके शब्दों में बुरी तरह उलझा और अचंभित सा बन उसे देखने लगा। मिस्टर भट्ट की बेटी थी ये, जिसकी 18वीं बर्थडे पार्टी में वो शामिल हुआ था। उसे इस वक्त यहाँ देखकर अर्णव हैरान था, और उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात थी उसके चेहरे पर बिखरे भाव, जो किसी और ही दिशा में इशारा कर रहे थे। उसके व्यवहार ने अर्णव को संशय में डाल दिया था। अर्णव के सवाल पर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे आप पसंद आ गए हैं, इसलिए मैं दोबारा आपसे मिलना चाहती थी और आपको सरप्राइज देना चाहती थी। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? उस मात्र 18 साल की लड़की ने बड़ी ही उत्सुकता से चहकते हुए सवाल किया। अर्णव के दिमाग में कुछ खटका, फिर उसने दिमाग दौड़ाया और शांति से उस सिचुएशन को डील करने का फैसला करते हुए हल्की मुस्कान लबों पर सजा ली। बहुत अच्छा लगा, तुमने तो मुझे शॉक ही कर दिया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुमसे ऐसे अचानक दोबारा मुलाकात होगी। आओ बैठें, आराम से बात करते हैं। अर्णव ने उसे सीट ऑफर की और खुद अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। तुम्हें तुम्हारे डैड ने यहाँ का एड्रेस दिया?
यस,
लड़की ने झट से सर हिलाया। तुमने कहा कि तुम्हें मैं पसंद आया। मैं जानना चाहता था कि बस एक मुलाकात में मैं तुम्हें पसंद कैसे आ गया, जबकि हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते।
अर्णव का ये सवाल सुनकर उस लड़की ने चहकते हुए जवाब दिया, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। डैड के मुंह से बहुत सुना है आपके बारे में। वो हमेशा आपके बारे में बातें करते हैं और खूब तारीफ करते हैं, जबकि वो किसी से जल्दी इम्प्रेस होते नहीं, पर आपसे काफी इम्प्रेस हैं। ओ, तो भट्ट साहब से तुमने मेरे बारे में सुना है, तो क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं मैरिड हूँ और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ? बताया था, पर आपकी वाइफ तो 3 सालों से मिस्टर इंडिया बनी हुई है, किसी ने उन्हें नहीं देखा। और मैंने तो न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा है कि अब आप दोनों साथ भी नहीं रहते। न्यूज वाले तो कुछ भी सच झूठ छापते हैं ताकि अपना काम निकाल सके, और 3 सालों से तो मैं भी कहीं नहीं गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा इस दुनिया में वजूद ही नहीं? अर्णव ने बहुत ही शांति से उसे समझाने की कोशिश की। वहीं उसकी ये बात सुनकर उसने हैरानगी से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए सवाल किया, मतलब आप और आपकी वाइफ अलग नहीं हुए? नहीं, और कभी हो भी नहीं सकते। वैसे तो ये खबर झूठी है, पर अगर सच भी होती तब भी मेरी जिंदगी और दिल में मेरी वाइफ के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे, और अपनी आखिरी सांस तक यूं ही उसी चाहता रहूँगा। ये चाहत, ये मोहब्बत, ये एहसास सिर्फ उसके लिए है। अर्णव का जवाब सुनकर उस लड़की का चेहरा उतर गया, जिसे देखते हुए अर्णव ने आगे कहा, तुमने अपने डैड से मेरे बारे में सुना है, शायद उन्होंने बस मेरी तारीफ ही की होगी, इसलिए मेरे लुक्स, पर्सनालिटी, चार्म पर तुम्हारा दिल आ गया होगा। अभी तुम्हारी उम्र भी ऐसी है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, पर तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि पसंद और प्यार में बहुत अंतर है। अपनी जिंदगी में पसंद हमें कई लोग आते हैं, और प्यार किसी एक से होता है। पसंद हम लोगों की खूबियों को करते हैं, पर जब प्यार होता है तो उस इंसान की खूबियों के साथ उसकी खामियों से भी इश्क हो जाता है। जरूरी नहीं कि हर इंसान जिसे हम पसंद करें वो हमें हासिल हो जाए, पर जिससे मोहब्बत हो वो ला हासिल होकर भी हमेशा आपके साथ रहता है। तुमने मेरी खूबियों को जानकर मुझे पसंद किया, एडमायर किया, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, बट इससे आगे भूल से भी मत बढ़ना। पसंद को पसंद ही रहने दो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई मेल ही नहीं। इतनी छोटी हो तुम, अपनी लाइफ एंजॉय करो। प्यार के अलावा भी दुनिया में करने को और एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है। रही बात प्यार की, तो वक्त आने पर वो भी हो जाएगा। कोई तुम्हारी जिंदगी में भी आएगा जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा, और जिसकी खूबियों के साथ उसकी खामियों से भी तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी। जितनी क्यूट और प्यारी तुम हो, तुम मेरे जैसा सख्त इंसान डिजर्व नहीं करती। इंतजार करो, देखना तुम्हारी जिंदगी में कोई तुम्हारी ही जैसा लड़का आएगा जो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। वो तुम्हें बे इंतहा मोहब्बत करेगा, और जब ऐसा लड़का तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें मेरी बातें और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। बस इतना ध्यान रखना कि तुम बहुत इनोसेंट और नादान हो। किसी के लिए कभी अपनी इनोसेंस को मत खोना। खुद को कभी किसी के लिए बदलने की कोशिश मत करना। किसी को अपनी नादानी का फायदा मत उठाने देना। इंसान को अच्छे से देखने और परखने के बाद उस पर विश्वास करना, और जैसे अभी मेरे करीब आई थी, बिना सोचे समझे ऐसा दोबारा कभी मत करना। तुम्हारी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं। समझ रही हो ना मेरी बात?
अर्णव बेहद प्यार से और नर्म अंदाज में उसे बारीकी से सब समझा रहा था। बच्ची ही थी अभी वो, अपने डैड की शहजादे थी। दुनिया कितनी क्रूर है इसका अंदाज़ा नहीं था उसे, इसलिए अपनी इनोसेंस के कारण आगे वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए, इसलिए अर्णव उसे बहुत ही प्यार से सब बातें गहराई से समझा रहा था। उसकी आधी बातें उस लड़की के सर के ऊपर से हो गुजर गईं।